घुप अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और एक इंसान गहरी अस्वाभाविक नींद में है। उसके सामने कुछ जानवरों की लाशें पड़ी हैं, एक बछिया, एक बकरी और एक मेड़ा।
हाँ, और ये कोई आम शिकार नहीं है। इन सभी जानवरों को बीच से दो बराबर हिस्सों में काटा गया है।
बिल्कुल, और उनके टुकड़ों को एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है ताकि उनके बीच से गुजरने का एक रास्ता बन सके। आज के नजरिए से देखा जाए तो ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है।
ये हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि प्राचीन दुनिया में जब कोई कानूनी दस्तावेज या डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते थे, तब इसी खौफनाक तरीके से दो पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता साइन किया जाता था।
और इसी खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीके को समझे बिना हम इतिहास के सबसे बड़े वादों को समझ ही नहीं सकते। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं।
जी हाँ, और हमारा जो मुख्य स्रोत है वो डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय का ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री पर दिया गया एक बेहद विस्तृत अकादमिक व्याख्यान है। ये मुख्य रूप से उत्पत्ति यानी बुक ऑफ जेनेसिस के अध्याय 12 और 15 पर केंद्रित है।
लेकिन मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये किसी धर्मशास्त्र की सूखी क्लास नहीं है। डॉक्टर विनॉय का ये विश्लेषण हमें प्राचीन इतिहास और उन रहस्यमयी अनुष्ठानों के भीतर ले जाता है जिन्होंने मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं में से एक को जन्म दिया,
जिसे हम अब्राहमिक कवरेंट कहते हैं।
बिल्कुल, तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि कैसे हिब्रू व्याकरण की एक बारीक सी बहस, ईश्वर के प्रकट होने के अलग अलग तरीके और जानवरों को दो टुकड़ों में काटने का ये अनुष्ठान आपस में जुड़े हुए हैं। कहानी शुरू होती है एक बुलावे से।
सही कहा, अब्राहम को एक बुलावा मिलता है। वो उस वक्त अपने घर, अपने लोगों और पूरी तरह से सुरक्षित जीवन के बीच है और उसे अचानक सबको छोड़कर एक अनजान जगह जाने का आदेश मिलता है।
हाँ, एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल का कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन इस भारी त्याग के बदले में उसे एक बहुत बड़ा वादा मिलता है कि मैं तुम्हारा नाम महान करूँगा।
इस एक वाक्य के पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही गहरा है। अगर हम उत्पत्ति के पिछले पन्नों को पलटें, यानी अध्याय 11 को देखें, तो वहाँ टावर ऑफ बेबेल की घटना का जिक्र मिलता है।
अच्छा, जहाँ बेबेल में मानव समाज ने एक बहुत ऊंची मीनार बनाने का फैसला किया था।
एग्जैक्टली, उनका नारा था कि चलो हम अपना नाम महान बनाएं। ये विशुद्ध अहंकार था। इंसान खुद अपनी ताकत और घमंड के दम पर एक महान नाम छीनना चाहता था।
और बेबेल के लोगों ने जो चीज जबरदस्ती हासिल करनी चाहिए वो उन्हें मिली नहीं, पूरी सभ्यता बिखर गई। लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम बिना किसी अहंकार के अपना सब कुछ छोड़ देता है।
हाँ, और उसे वही चीज एक उपहार के रूप में मिल जाती है, एक महान नाम। ये इतिहास का एक बहुत ही शानदार कंट्रास्ट है।
बिल्कुल, लेकिन इस वादे का जो दूसरा हिस्सा है, उत्पत्ति 12 अध्याय के तीसरे श्लोक में, वहाँ डॉक्टर वेनॉय का व्याख्यान हमें एक गंभीर भाषाई उलझन में डाल देता है।
हाँ, अनुवाद का एक ऐसा विवाद जिसने विद्वानों को दो खेमों में बांट दिया है।
सही बात है, हिब्रू भाषा की अपनी एक अलग जटिलता है। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि प्राचीन हिब्रू बिना स्वरों के लिखी जाती थी, यानी बिना वाउल्स के।
जी, और क्रियाओं के रूप पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकते हैं। उत्पत्ति में यह विशिष्ट वाक्यांश 5 बार आता है।
3 बार इसे हिब्रू के निफाल रूप में लिखा गया है और 2 बार हित पैल रूप में, है ना?
हाँ, और पूरी बहस का केंद्र यही है कि क्या इसका अनुवाद पैसिव होना चाहिए यानी कर्मवाच्य, या फिर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए यानी निजवाचक।
मतलब अगर इसे पैसिव माना जाए तो अनुवाद होगा कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी लोग धन्य होंगे, और अगर इसे रिफ्लेक्सिव माना जाए तो अर्थ होगा कि लोग तुम्हें देखकर खुद को धन्य मानेंगे।
बिल्कुल सही।
अगर मैं इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझाऊं तो क्या मैं एक एनालॉजी दे सकती हूँ?
हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए।
तो पैसिव अनुवाद का मतलब है कि अब्राहम एक बहुत बड़े ट्रस्ट फंड की तरह है, एक ऐसा ट्रस्ट फंड जिसका पैसा असल में पूरी दुनिया के लोगों के बैंक खातों में बांटा जाएगा। मतलब दुनिया को सच में उसके जरिए कुछ ठोस फायदा मिलेगा।
बहुत सही उदाहरण है।
लेकिन अगर अनुवाद रिफ्लेक्सिव है तो अब्राहम बस एक मशहूर दूर बैठा अरबपति है। लोग उसकी तस्वीर देखते हैं और कहते हैं कि काश मेरी किस्मत भी अब्राहम जैसी हो जाए। वो सिर्फ एक प्रेरणा है, असल में किसी को कुछ दे नहीं रहा है।
ये ट्रस्ट फंड वाला उदाहरण इस पूरी भाषाई बहस के एकदम सटीक मर्म को पकड़ता है। एफ्रेम स्पीजर जैसे कई आधुनिक विद्वान इसी अरबपति वाले तर्क का समर्थन करते हैं।
अच्छा, तो उनका तर्क क्या है इसके पीछे?
उनका भाषाई तर्क यह है कि हिब्रू का हितपिल रूप आमतौर पर रिफ्लेक्सिव ही होता है, उसे पैसिव नहीं माना जा सकता। इसलिए वे कहते हैं कि इन सभी पांचों श्लोकों का अनुवाद रिफ्लेक्सिव होना चाहिए।
मतलब स्पीजर के अनुसार अब्राहम के जरिए दुनिया को कोई सीधा आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, बल्कि वो केवल आशीर्वाद का एक स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन डॉक्टर वैनॉय तो अपने व्याख्यान में इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं ना?
बिल्कुल खारिज करते हैं। वे एलन मैकरे और ओटी ईलिस का संदर्भ लाते हैं, जो कहते हैं कि व्याकरण का ये कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है।
स्रोत में बताया गया है कि मैकरे का डेटा दिखाता है कि हिब्रू में ऐसे कई उदाहरण है जहाँ हितपेल का उपयोग पूरी तरह से पैसिव अर्थ में हुआ है।
हाँ, लगभग एक चौथाई मामलों में। और मुझे लगता है इससे भी बड़ा सबूत तो इतिहास के पन्नों से मिलता है, जो प्राचीन अनुवादकों के फैसले थे।
एकदम सही, प्राचीन अनुवादक इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं। जब ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में हिब्रू बाइबल का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे हम सेप्टुआगेंट कहते हैं, तो उन विद्वानों ने इसे स्पष्ट रूप से पैसिव के रूप में ही अनुवादित किया।
और आरामी भाषा के जो प्राचीन अनुवाद हैं, जिन्हें टारगम्स कहा जाता है, उनमें भी तो इसे पैसिव ही माना गया है।
और न्यू टेस्टमेंट के लेखकों ने भी इसे इसी रूप में लिया कि दुनिया को अब्राहम के वंश के माध्यम से शाब्दिक रूप से कुछ मिलेगा।
हाँ, तो ये महज व्याकरण का विवाद नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन छिपा है। अगर ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होता तो ये एक व्यक्ति के मशहूर होने की एक सीमित ऐतिहासिक कहानी बनकर रह जाती।
लेकिन पैसिव होने का मतलब है कि अब्राहम एक ऐसा चैनल है जिससे होकर एक वैश्विक आशीर्वाद गुजरेगा, जो बाद में मसीह के आने के भविष्यवाणी के रूप में देखा गया। मतलब सच में एक वैश्विक ट्रस्ट फंड।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर विनोय ये भी स्पष्ट करते हैं कि यह आशीर्वाद हवा में तैरता हुआ कोई अमूर्त विचार नहीं था।
इसे जमीन के एक बहुत ही वास्तविक धूल और मिट्टी वाले टुकड़े के साथ बांधा गया था।
बिना जमीन के किसी भी प्राचीन साम्राज्य या वादे का कोई अर्थ नहीं था। और यहीं पर उत्पत्ति अध्याय 12 और 15 के बीच ईश्वर के प्रकट होने के तरीकों में एक बहुत ही बड़ा अंतर सामने आता है।
हाँ, श्रोत में डॉक्टर विनोय दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, थियोफनी और विजन। तो पहले थियोफनी की बात करते हैं, जो अध्याय 12 में है। थियोफनी का सीधा सा अर्थ है ईश्वर का भौतिक रूप में प्रकटीकरण, है ना?
बिल्कुल, एक ऐसी उपस्थिति जिसे बाहरी इंद्रियों से देखा या महसूस किया जा सके। कोई ऐसी चीज जो भौतिक वातावरण में सचमुच बदलाव ला रही हो।
तो जब ईश्वर पहली बार उस जमीन का वादा करते हैं तो वो एक थियोफनी के जरिए आते हैं। वो भौतिक रूप से उस जमीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि वादा एक भौतिक जमीन यानी कनान का है।
हाँ, लेकिन अध्याय 15 में यह स्वरूप बदल जाता है। वहां ईश्वर एक विजन या आंतरिक दृष्टि में प्रकट होते हैं।
मतलब ये विजन कोई बाहरी भौतिक घटना नहीं है?
नहीं, ये इंसान की चेतना के भीतर उसके मन की गहराई में होने वाला एक अनुभव है, जहां भविष्य के भारी रहस्य खोले जाते हैं।
और ये जमीन का वादा कोई छोटा मोटा नहीं था। उत्पत्ति 17 में इस वादे को अनंत कहा गया है, एवरलास्टिंग।
यहीं पर एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है।
बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है। जब हम प्राचीन मध्य पूर्व के इतिहास को देखते हैं तो वहां मिस्र, असीरिया, बेबीलोन जैसे साम्राज्य रोज बनते और मिटते थे। सीमाएं तो हमेशा बदलती थीं।
ये तो इतिहास की सच्चाई है।
तो ऐसे अस्थिर भू राजनीतिक माहौल में किसी एक जमीन के टुकड़े का अनंत वादा व्यवहारिक रूप से कैसे टिक सकता है? क्या इस वादे को सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए?
मतलब आपका कहना है कि जमीन का अर्थ भौगोलिक सरहदें ना होकर एक वैश्विक शांति या आध्यात्मिक घर हो? इतिहास और धर्मशास्त्र में ये बहस सदियों पुरानी है।
हाँ, क्योंकि बहुत से विद्वान यही मानते हैं कि ये वादा अब आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व में फैल चुका है।
लेकिन डॉक्टर विनोय का नजरिया इस पर एकदम स्पष्ट है। वे इसे किसी रूपक या प्रतीक के रूप में नहीं देखते। उनके व्याख्यान के अनुसार ये एक शाब्दिक और भौगोलिक वादा ही है।
अच्छा, तो उनके हिसाब से ये वादा पूरा कैसे होगा या हुआ है?
वे मानते हैं कि राजा दाऊद और सुलेमान के समय में, जब इसराइल की सीमाएं मिस्र की नदी से लेकर फरात नदी तक फैली थीं, तब ये वादा आंशिक रूप से पूरा हुआ था।
लेकिन अनंत शब्द का मतलब है कि इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी भविष्य में भौगोलिक रूप से ही पूरा होना बाकी है, डॉक्टर विनोय के अनुसार।
बिल्कुल, और अगर किसी जमीन का इतना बड़ा और अनंत दावा किया जा रहा हो तो उसे सिर्फ शब्दों से सुरक्षित नहीं किया जा सकता था।
उसे किसी ऐसी चीज से सील करना था जो अटूट हो, और यहीं से हम वापस उसी भयानक दृश्य की तरफ लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, वो गहरी नींद, वो खौफनाक अंधेरा और बीच से कटे हुए जानवर।
हाँ, ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्राचीन कानूनी प्रणाली काम कर रही थी। इस अनुष्ठान को समझने के लिए हिब्रू मुहावरा कटक कवेनेंट को समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, आज के समय में जब दो पक्ष किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो इंग्लिश में कहा जाता है मेक अ कोवेनेंट या समझौता बनाना।
लेकिन प्राचीन हिब्रू में वो कहते थे कटक कोवेनेंट, यानी समझौता काटना, और ये भाषा सीधे तौर पर जानवरों को काटने की इस प्रथा से आई थी।
और ये प्रथा सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं थी। स्रोत में मारी दस्तावेजों का बहुत जोरदार संदर्भ दिया गया है। ये दस्तावेज पुरातत्व विज्ञान की बहुत बड़ी खोज है।
हाँ, 1930 के दशक में सीरिया के मारी शहर के खंडरों से हजारों मिट्टी की गोलियां या टैबलेट्स मिली थीं। ये प्राचीन मध्य पूर्व के कानूनी जीवन की तस्वीर पेश करती हैं।
और उन दस्तावेजों में कई बार गधा मारने का जिक्र आता है। जब दो कबीलों या राज्यों के बीच कोई संधि होती थी तो वे एक गधे को मारकर यह सुनिश्चित करते थे कि अब उनके बीच शांति रहेगी।
मतलब ये कोई धार्मिक बलि नहीं थी, बल्कि ये प्राचीन दुनिया का नोटरी पब्लिक था। बिल्कुल एक कानूनी मुहर।
और इसका तरीका ये था कि जानवरों को काटकर उनके टुकड़ों को आमने सामने रखा जाता था,
और जो व्यक्ति वादा कर रहा होता था उसे उन कटे हुए टुकड़ों के बीच से पैदल गुजरना होता था। इसे सेल्फ मेलेडिक्ट्री ओथ या आत्मश्राप कहा जाता है।
मतलब उन टुकड़ों के बीच से गुजरते हुए वो इंसान प्रतीकात्मक रूप से यह कह रहा होता था कि अगर मैं अपना ये वादा तोड़ूं तो मेरा भी वही हश्र हो जो इन जानवरों का हुआ है।
एकदम सही, मुझे भी इसी तरह दो टुकड़ों में काट दिया जाए।
एक मिनट, यहीं पर मुझे पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट मिला। यहाँ पूरी कहानी पलट जाती है।
अच्छा, वो कैसे?
जब मैं उत्पत्ति 15 के उस हिस्से को पढ़ रही थी जहाँ ये अनुष्ठान हो रहा है, तो श्लोक 17 कहता है कि सूरज डूबने के बाद एक धुआं छोड़ती हुई भट्टी और एक जलती हुई मशाल उन कटे हुए जानवरों के बीच से गुजरी।
हाँ, और अब्राहम तो वहाँ गहरी नींद में था।
एग्जैक्टली, धुआं और आग हमेशा से ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर खुद उन टुकड़ों के बीच से गुजर रहे हैं, अब्राहम नहीं गुजर रहा।
और ये उस समय की परंपरा के पूरी तरह से उल्टा है।
बिल्कुल, आम तौर पर जो शक्तिशाली राजा होता है वो अपनी कमजोर प्रजा से कसम खिलवाता है कि अगर तुमने गद्दारी की तो तुम्हें काट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रह्मांड का रचयिता खुद पर एक आत्मश्राप ले रहा है।
इस पूरी घटना का सबसे गहरा और क्रांतिकारी सत्य यही है। प्राचीन नियर ईस्ट में जो सुजरेनिटी संधियां होती थीं, उनमें हमेशा एक सुजरेन यानी बड़ा राजा और एक वैसल यानी छोटा राजा होता था।
और नियम के अनुसार हमेशा छोटा राजा ही टुकड़ों के बीच से गुजरता था और श्राप अपने ऊपर लेता था।
सही बात है, बड़ा राजा कभी अपनी जान दांव पर नहीं लगाता था, लेकिन उत्पत्ति 15 में सर्वशक्तिमान ईश्वर वैसल की भूमिका निभा रहे हैं और खुद कसम खा रहे हैं।
स्रोत में विद्वान मेरेडिथ क्लाइन का जो विश्लेषण है वो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। वे इस समझौते को एक प्रॉमिसरी ग्रांट का नाम देते हैं।
इतिहास में दो तरह के समझौते होते थे, एक जहां दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ करना होता था, और दूसरा जहां केवल बड़ा राजा अपने किसी वफादार को इनाम के तौर पर कुछ देता था और सारी जिम्मेदारी खुद लेता था।
और क्लाइन इसकी तुलना सिनाई पर्वत पर हुए समझौते से करते हैं, है ना? सिनाई में जब मूसा के समय में कानून दिए गए थे तब लोगों ने एक स्वर में कहा था कि ईश्वर ने जो कुछ कहा है हम वो सब करेंगे।
हाँ, वहाँ इंसानों ने कसम खाई थी, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और इतिहास गवाह है कि उन्होंने वो वादा बहुत जल्द तोड़ भी दिया।
तो सिनाई का वो समझौता एक लॉ कवेनेंट था जहाँ इंसानों के प्रदर्शन पर सब कुछ निर्भर था, लेकिन उत्पत्ति 15 का अब्रामिक समझौता पूरी तरह से ईश्वर के प्रदर्शन पर निर्भर है।
बिल्कुल, इंसान यानी अब्राहम वहाँ गहरी नींद में है, निष्क्रिय है। ईश्वर खुद आगे आते हैं और शर्त पूरी करने का सारा भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। मेरेडिथ क्लाइन के शब्दों में ये अनुष्ठान ओल्ड टेस्टामेंट का गोलगोथा है।
ओल्ड टेस्टामेंट का गोलगोथा, ये कोई हल्का शब्द नहीं है। गोलगोथा वो पहाड़ी थी जहाँ सदियों बाद मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था।
और ईसाई धर्म शास्त्र के अनुसार वो जगह है जहाँ ईश्वर ने मानवता के पापों का श्राप अपने ऊपर लिया था।
तो क्लाइन का तर्क ये है कि उत्पत्ति 15 में उन कटे हुए जानवरों के बीच से गुजरते हुए ईश्वर पहले ही दिन से ये स्थापित कर रहे हैं कि ये वादा कभी खतरे में नहीं पड़ेगा।
हाँ, अगर इंसान इस वादे के लायक नहीं भी रहा, अगर कुछ गलत हुआ, तो इसका श्राप, इसके टूटने की कीमत ईश्वर खुद अपने ऊपर झेलेंगे।
ये वफादारी और वादे का सबसे चरम और अंतिम रूप था। ये सिर्फ एक प्राचीन परंपरा नहीं थी, बल्कि एक गारंटी थी कि चाहे इंसान कितनी भी बार विफल क्यों ना हो जाए, ईश्वर का वो ट्रस्ट फंड वाला वैश्विक वादा हर हाल में पूरा होगा।
और वो जमीन का वादा भी। डॉक्टर वैनॉय का ये व्याख्यान हमें सिर्फ इतिहास के तथ्यों तक सीमित नहीं रखता। ये दिखाता है कि एक छोटा सा व्याकरणिक नियम कैसे एक वैश्विक उद्धार की कहानी बन जाता है।
बिल्कुल, निफाल और हितपेल की वो बहस, और ये भी स्पष्ट करता है कि कैसे ईश्वर भौतिक दुनिया यानी थियोफनी और मानव चेतना यानी विजन दोनों में काम करते हैं।
और सबसे बढ़कर ये हमें करत बेरीत यानी समझौते को काटने की उस खौफनाक लेकिन पवित्र दुनिया में ले जाता है जहां एक वादे का मतलब खुद की जान दांव पर लगाना होता था।
सच में प्राचीन दुनिया के लिए एक शब्द या एक वादा महज कोई कागजी औपचारिकता नहीं था, वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न था।
बिल्कुल, उस समय वादों की कीमत खून से चुकाई जाती थी।
लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट और वादों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज डिजिटल स्क्रीन पर लंबे लंबे नियम और शर्तें लिखे आते हैं
जिन्हें कोई पढ़ता भी नहीं है।
बिल्कुल, बिना पढ़े ही बस एक आई अग्री के छोटे से चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया जाता है। शब्दों को बहुत आसानी से बोला जाता है और उतनी ही आसानी से वादे तोड़ भी दिए जाते हैं।
हाँ, एक क्लिक से रिश्ते जुड़ते हैं और एक क्लिक से टूट जाते हैं।
तो इस प्राचीन इतिहास को देखते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। क्या इस साफ सुथरी डिजिटल और तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सब कुछ बस एक क्लिक दूर है, क्या इंसान के शब्दों और वादों का वो प्राचीन पवित्र और भारी वजन हमेशा के लिए खो गया है?
ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी समाज की जड़ों और उसके मूल्यों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें अपने बोले गए शब्दों की अहमियत पर सच में सोचना चाहिए।
बिल्कुल, तो इस विस्तृत और गहरे सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक बोले गए शब्दों के उस प्राचीन वजन और उनके पीछे छुपी कहानियों पर विचार करते रहें।